આત્માનું શાસન, લેક્ચર નંબર 73. ઓમ નમઃ સિદ્ધેય, ઓમ નમઃ સિદ્ધેય, ઓમ નમઃ સિદ્ધેય, ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ. નમો અરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આયરિયાણં, નમો વચ્છાયાણં, નમો લોયે સવસાહુણં, લક્ષ્મી નિવાસ નિલયં, વિલીન વિલયં, નિધાય હૃદિ વીરં, આત્માનુશાસનમહં, વક્ષે મોક્ષાય ભવ્યાનામ. પૂજ્ય શ્રી ગુણભદ્ર આચાર્ય રચિત યહ આત્માનુશાસન નામક ગ્રંથ હૈ, ઉસ પર ક્ષુલ્લક શ્રી મનોજી વર્ણીજી કે પ્રવચન હુએ હૈ, યે સહજાનંદજી કે, ઓર ઉસ આત્માનુશાસન પ્રવચન દૂસરી પુસ્તક કે પૃષ્ઠ સંખ્યા 48 પર હમ આ ગયે. 48 નયા પેરેગ્રાફ હૈ, વહાં સે હમ પઢેંગે. પરમાર્થ મે પુરુષાર્થ કી પ્રધાનતા, પરમાર્થ મે યાની યે જો આધ્યાત્મિક જો બાત હૈ ઉસકે અંદર. ભૈયા સાંસારિક બાતો મે તો કર્મો કી પ્રધાનતા હૈ, ઉસકા અર્થ ક્યા હૈ? જો કોઈ સંયોગ હૈ ઉસમે પૂર્વ જો અપને પાપ પુણ્ય કે અનુસાર ઉસકે યે ફલ હૈ, તો કર્મો પર આરોપ આતા હૈ કે ઉસકે કારણ કર્મ બંધે, ઓર ઉસકે ઉદય મે ફિર વો મિલતે હૈ. ઇસલિયે વહાં તો કર્મો કી પ્રધાનતા હૈ, પ્રધાનતા બતા રહે. જૈસે કિ લોગ કભી વિવાદ કરતે હૈ કે પુરુષાર્થ બડા હૈ કે ભાગ્ય બડા હૈ. સંસારિક લાભ કે પ્રસંગ મે તો ભાગ્ય બડા હૈ, હા સંસારિક લાભ એને વહી ના સંયોગ. ઓર આત્મશાંતિ કલ્યાણ મોક્ષ કે પ્રકરણ મે પુરુષાર્થ બડા હૈ. વહાં તો કુછ કર્મ કા ઉદય કુછ મોક્ષ નહીં દિલાતા, સમજ મે આઈ ના? યાની કિતના ભી પુણ્ય બાંધો ઓર કર્મ, અભી સારે પુણ્ય કર્મ હૈ તો ઉસકે કારણ મોક્ષ મિલેગા કે નહીં મિલેગા, યે નક્કી કરના હૈ ના પહેલે. યાની જો વ્રતાદિ કે શુભ પરિણામ હૈ વો કરને સે મોક્ષ નહીં મિલેગા, વો કરને સે કર્મ બંધ હોગા. હા મોક્ષ મિલેગા તો આત્મા મે જો સ્થિરતા હૈ ઉસી સે વિતરાગતા હોગી, વહી બઢતે બઢતે ફિર મોક્ષ હો જાયેગા. તો કહેતે આત્મશાંતિ કલ્યાણ ઓર મોક્ષ કે પ્રકરણ મે પુરુષાર્થ બડા હૈ, ઓર એસા ભી કહે સકતે હૈ કે ભાગ્ય કે ઉદય સે સમાગમ મિલતા તો હૈ, પર વહ પુણ્યબંધ હુઆ કબ થા? કૈસે કૈસે વહ પુણ્યબંધ? આત્મા કે સદભાવ, સદવિચાર, સદાચાર કે પરિણામો કે કારણ હુઆ થા. યાની જીસ પુણ્ય કે ઉદય મે હમ કહેતે હૈ, ભાગ્યશાલી કે કાનો મે બાત પડતી હૈ, યાની હમારે કોઈ એસે અપૂર્વ પુણ્ય કે કારણ હમે યે સુનને કો મિલેગા. પણ વો કૌન સા પુણ્ય? યે કહે રહે કે આત્મા સંબંધી સદવિચાર જો સદાચાર કે પરિણામ હૈ ઉસકે કારણ જો પુણ્ય બંધા થા ઉસ પુણ્ય કે ફલ મે યે વાણી સુનને કો મિલતી હૈ, યે કહે રહે. ઓર્ડિનરી કિસી ભી પુણ્ય કે ઉદય કે યે નહીં મિલ રહા હૈ, ક્યોંકિ પુણ્ય કે ભી ઉદય અલગ અલગ ટાઈપ કે હોગે કે નહીં હોગે. એસે ધન મિલના, ધન સંબંધી પુણ્ય કા ઉદય. કિસી કો ધન હૈ પરંતુ શરીર નિરોગી નહીં હૈ, તો શરીર કે નિરોગી સંબંધી કા પુણ્ય જુદા હોગા. યે સબ હૈ, નોકર નહીં મિલતે ના ભૈયા, યે સબકો બરાબર. પહેલે મેં પહેલે પૈસા હૈ મગર નોકર નહીં મિલતે, તો નોકર સંબંધી પુણ્ય નહીં આપકા. સબ કુછ હૈ, બચ્ચા નહીં હૈ, બચ્ચા હૈ પરંતુ અપના માનતા નહીં હૈ, તો અલગ અલગ પુણ્ય કે ઉદય હૈ કે નહીં, યે કહેના ચાહતે હૈ. અને કેવલ એક પુણ્ય હૈ ઇસલિયે સભી ચીજે મિલેગી, એસે નહીં. અલગ અલગ પુણ્ય કે ઉદય હો ગયે હમ, અને અલગ અલગ ચીજો સંબંધી અપને પુણ્ય કે ઉદય જુદે જુદે હો ગયે. तो कहते कि आत्मा के सद्भाव सदविचार सदाचार के परिणामों के कारण हुआ था की बात है, यानी पहले कभी हमने उसके बारे में सोचा था, उस संबंधी विचार भी आए थे, मैं कौन हूँ कैसा हूँ क्या, तो इसको सहज रूप से ऐसा सुनने का अवसर मिला। और वह सदविचार सद्भाव पुरुषार्थ ही तो है, यानी उस जाति का पुरुषार्थ था कि अपने स्वरूप समझने संबंधी जिज्ञासा जो है वो भी एक टाइप का पुरुषार्थ है, पुण्य बंदा, उसके कारण ये सुनने को मिला, ये समझ। इस दृष्टि से पुरुषार्थ ही बड़ा कहलाया, यानी वो भी पुरुषार्थ कहलाए ना, उस संबंधी भी आत्मा संबंधी कुछ विचार चल रहे थे, कुछ अंदर ही उत्सुकता जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी, भले अभी मार्ग ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था, परंतु वो पुण्य कोई बंधा था, तो ये सच्चा मार्ग भी मिल गया। ये कह रहे जो पुण्य बंध हुआ वह किसी न किसी पुरुषार्थ के निमित्त से हुआ ना, तो परंपरा का, परंपरा ने आगे चलकर पूर्व काल का पुरुषार्थ इस संपदा के मिलने में कारण है। कौन सी संपदा? ये वाली, कौन से सुनने को मिलना, ये संपदा है। वो लगता नहीं पुण्य का उदय, पुण्य का उदय बड़ा बंगला हो, मोटर गाड़िया बड़ी है, नौकर चाकर है, हाँ पूरे वो, तो ये पुण्य का उदय लगता है लोगों को, पर ये सच्ची बात सुनने को मिलना ये पुण्य का उदय नहीं लगता है, ये कहना चाहती हूँ। ये तो उत्कृष्ट पुण्य के उदय में ऐसा मिलेगा, क्योंकि इस आत्मा के विचार आना तक भी मुश्किल है, फिर उस संबंधी सुनने के भाव होना तो और ज्यादा मुश्किल है। देखते परंपरा का पूर्व काल का पुरुषार्थ इस संपदा के मिलने में कारण है, किंतु मोक्ष मार्ग कल्याण साधना आत्महित उस आत्मा का पुरुषार्थ प्रधान है। यद्यपि वहां भी ऐसा है कि भाग्य का ठीक उदय हो, पुण्य का उदय हो, तो ऐसी स्थिति में मुझे अच्छा भव मिले, अच्छा वातावरण मिले, और वहां यह आत्मा अपने ज्ञान पुरुषार्थ को भी कर सकता है। यूं पुण्य भी निमित्त बन रहा है मोक्ष मार्ग के चलने में, परंतु किंतु प्रधान तो पुरुषार्थ ही है, क्योंकि पुण्य के उदय तो बहुतों को मिलते हैं, परंतु प्रधानता यहाँ पुरुषार्थ की है। वैसे तो हम पुण्य के उदय को, यानी कर्म के उदय को तो गिनते ही किसी स्टेज पर, यानी निमित्त क्या पांचों समवाय तो वहां होते ही होते हैं, ऐसा भी जैसी होनहार है उस टाइप का ही पुरुषार्थ चलेगा। भाग्य और पुरुषार्थ का विवाद, ये पहले भी बात आई थी ना, मैं दो लड्डू मिले थे वो, दो मनुष्यों में झगड़ा हुआ, एक कह रहा था कि भाग्य बड़ा है और एक कह रहा था कि पुरुषार्थ बड़ा है। दोनों राजा के पास पहुंचे, राजा ने बहुत कहा कि तुम लोग आपस में सुलह कर लो, वे न माने, अपनी अपनी हट पर अड़े रहे, तो राजा ने एक बड़े कमरे में कच्ची हवालात कर दी और कह दिया कि परसों तुम्हें निकाला जाएगा। पहले से ही कमरे में अच्छी जगह बड़े ताक में आधा आधा शेर के दो लड्डू धर दिए थे, वे दोनों उस कमरे में नजरबंद पड़े थे। एक दिन गुजरा, अब तो भूख के मारे दोनों बेचैन पड़े हैं, भूखे पड़े हैं। जो पुरुषार्थ को प्रधान कह रहा था उससे रहा न गया, तो सारे कमरे में छानबीन करने लगा। यहां वहां कुछ देर तक देखने के बाद एक ताक में रखे हुए दो लड्डू मिले। उसने तो एक लड्डू खूब खाया, पेट भर गया। अब वो सोचता है कि अपना पेट भी भर ही गया, यह भूखा क्यों मरे, इसे भी दे दे। उसे भी एक लड्डू दे दिया, उसने भी खाकर अपना पेट भर लिया। अब जब दो दिन व्यतीत हो गए तो वे दोनों न्यायालय में बुलाए गए और पूछा, बोलो पुरुषार्थ कैसे बड़ा है। तो बोला, देखो हमने पुरुषार्थ किया, यहां वहां खोजा तो लड्डू मिल गया, सो हमने खूब खाया और इसे भी खूब खिलाया। भाग्य वाले से पूछा, बोलो भाग्य कैसे बड़ा है। वह कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, पड़े रहे टांगे पसारे, पर इसने खुद लाकर हमें लड्डू दिया, हमने खाकर पेट भर लिया। तो सांसारिक स्थिति में भाग्य की प्रधानता है, इसलिए ऐसी हिम्मत बनावे कि रंच भी चिंता मत करे, जो भाग्य को मंजूर है सो है, हम उसके अधीन नहीं हो। हम तो सद्विचार सद्भाव ज्ञान दृष्टि रखकर अपना काम करें, जो स्थिति गुजरती हो सो गुजरे, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है, इतनी हिम्मत हो। ऐसा कहने पर लोग कहते तो क्या जब कर्म के उदय में आएंगे तो क्या हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे हम? बच्चों के लिए हमारे कोई कर्तव्य नहीं है? हाँ, वो करते हुए ये ध्यान में रखो कि तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, उनके भी जो भाग्य के अधीन है और आपके भी भाग्य के अधीन क्या है, आपकी इच्छा है कि बच्चों का अच्छा हुआ, वो इच्छा की पूर्णता हम कहो, पूर्ति यानी वो इच्छा मिट जाना, उसके अनुसार कार्य होना, ये हमारे पुण्य के अनुसार, और वो जो बच्चों का जो होना है वो उनके पुण्य के अनुसार। ख्याल में आते ना, हमें क्या है, बच्चों की चिंता, वो मिटेंगी तो हमारे पुण्य के अनुसार, और बच्चों की होनहार उनके पुण्य के अनुसार, उनके पाप पुण्य जो कुछ है उसके अनुसार होगी। तो यहाँ कहते हम करते जो कुछ योग्य, हम मनुष्य जैसे हमारे उचित कार्य कर रहे हैं, परंतु हम उससे जुदा है जानने वाले, उस समय भी अपने ख्याल में रखना है ये विचार, ये जो खूंटा कभी नहीं छोड़ना है कि मैं मानने में जो भूल हो रही है, ये सब अपने में उठने वाले राग द्वेष के परिणाम है, ये भी ख्याल में आएंगे, उससे भी मैं जुदा हूं, क्योंकि ये क्षणिक है, मेरे में उठ रहे हैं पर मैं उस रूप नहीं हूं, ये नक्की करना है। यानी वो नहीं होने चाहिए, दबाना चाहिए, उसकी बात नहीं है, जो हो रहे हैं वो मेरे से जुदे है, ऐसा पहले मन में नक्की करना है उसको। धर्म पंथ, हम में वह कला है कि जैसी भी हमारी स्थिति होगी आर्थिक वैभव की, हम उस सब स्थिति में अपना निपटारा कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। तो पीत ही जाएगी ना, दिन तो वो कभी रहेंगे नहीं, कुछ थोड़े दिन के बाद तो कैसे भी तो गुजारा तो होना ही है, अभी आयु बाकी है तो कैसे ना कैसे तो जी ही लेगा। हमारा जीवन वैभवशाली बनने के लिए नहीं है, किंतु धर्म पालन करके आत्म कल्याण के लिए है। यानी हमारे पास खूब कपड़े दागिने गहने हो जाएंगे तो ही हम गुजारा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़े से कपड़ों में गहने वो भी चल सकता है। इस प्रकरण में यह कहा जा रहा है, ये समस्त वैभव मिलते हैं धर्म के प्रसाद से। बड़े राजा हो गए और धर्म के जानकार ज्ञानी पुरुष राजा की ही दास्ता करे तो यह शोचनीय बात है। यानी ज्ञानी होकर भी पैसे के पीछे अगर पागल हो जाए, अभी आजकल राजा नहीं है पर कोई बड़े हो गए सेठ साहूकार जो हो गए धनवान लोग, तो कि उनके पीछे अगर लगे, यानी उनके धन की अगर महानता भाषित हो, तो कहते वो शोचनीय बात है। राज्यपद है सो धर्म का फल है, ऐसे ही लोग में खूब प्रसिद्धि है। धर्म साधना की सर्व सामग्री मिलने से ही धर्म साधना हो नहीं सकता क्या? हो नहीं सकती। क्या कहा? धर्म साधना की सर्व सामग्री मिलने से ही धर्म साधना हो नहीं सकती। कोई धर्म तो साधे नहीं और धन आदि का लोभ लेकर राजा महाराजाओं की भारी सेवा करे तो आचार्य देव कहते हैं हमको इसकी चिंता है। राजा तो धर्म के किए से हुआ था और लोग धर्म की तो सेवा न करे, राजा की सेवा करे तो यह उल्टा ही काम हुआ। क्या कहना चाहते हैं? ये ज्ञानी होकर राजा की सेवा करना चाहते पर वो राज्यपद क्यों मिला था? हाँ, पूर्व में जो धर्म के साथ जो पुण्य बंधा था उसके कारण हुआ था, और ये क्या कर रहा है, धर्म की साधना छोड़कर राजा की सेवा करने लगा। यह राजा जिस धर्म के प्रसाद से हुआ है, सेवा उस धर्म की करनी चाहिए या राजा की करनी चाहिए? सब ज्ञान और अज्ञान का अंतर है। जिस विवेकी पुरुष के हृदय में ज्ञान जगता है और पर की अपेक्षा न करके साहसी बन जाता है, उसको ही धर्म का पंथ प्राप्त होता है। धर्म सेवन की उपादेयता। भाई, धर्म का सेवन छोड़कर अन्य कार्य करना योग्य नहीं है। पंचेंद्र के विषयों की साधना में और यश कीर्ति के विस्तार में अनुराग बना करते हैं, किंतु देखो ये दोनों ही बातें असार हैं। मैं तो ऐसा विचार करती हूँ, इसको यश प्रसिद्धि चाहिए, कितने लोगों में यश होगी इसके, यानी वो भी मनुष्यों में, पशु पक्षियों से में तो कुछ होना नहीं है। और ये भी कौन है, तो जैनियों में मान लेते ना, ये जैनिज्म की बात कर रहे या कोई अन्य भी बात हो, तो कितने गिने चुने जानेंगे। और सच में अगर उसने कुछ अचीव किया है तो अनंत केवल ही जान रहे कि नहीं उसको, तो प्रसिद्धि हो रही कि नहीं उनके, तो ये किसमें प्रसिद्धि चाहता है, अज्ञानियों में। अरे तो महाज्ञानी इनको जान रहे, उसमें समाधान नहीं हो रहा है इसको, और ये थोड़े अज्ञानी जाने तो उसमें खुश खुश हो रहा है। तो ये लौकिक प्रसिद्धि से अपने को कुछ नहीं मिलने वाला, अपने आत्मा की प्रसिद्धि अपने को हो जाए उसमें सब कुछ मिल जाता है। लोग हमें जाने उसमें हमारा क्या भला बुरा, हम अपने को जानेंगे उसी में अपनी भलाई है। इंद्रिय विषयों से इसे कोई लाभ की बात नहीं मिलती, अंत में पछताना ही पड़ता है, और यश के विस्तार से इसका कुछ उद्धार नहीं हो जाता। यानी उसको क्या मिला, ये तो बस मानसिक एक कल्पना की बात है कि मैंने, मेरा इतना यश हो गया। लोग इस देह को निरख कर सोचते हैं कि यह मैं हूं, और ये देह, यह चाम तो सब जानते हैं, किसी दिन जला दिया जाएगा, राख बन जाएगा। कुछ जरा आगे की बात सोचो, जो जलकर राख बन जाएगी। ऐसे इस देह में यह मैं हूं ऐसी वासना बनाकर कितने पाप किए जा रहे हैं। यानी मैं शरीर रूप हूं और उसके लिए क्या क्या नहीं करता है, जो कुछ क्रोध मान माया लोभ, जो कोई झूठ के परिणाम, मायाचारी के परिणाम, अन्य भी जो कोई हिंसा वगैरह जो चल रही है, तो कहते मिथ्यात्व के समान और कोई पाप नहीं। यही सबसे बड़ा पाप तो ये हो रहा है, ये मैं हूं ये मानना, ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि अपने को आत्मा को नहीं माना, यानी आत्मा की हिंसा कर दी, उसका अस्तित्व नहीं माना, तो क्या किया उसने, आत्मा का घात कर दिया। और कहता है पर की दया पालने से मुझे मोक्ष हो जाएगा, अपनी दया नहीं पाल रहा। अपनी दया क्या है, जैसा हमारा स्वरूप है वैसा एक्सेप्ट करना, ये अपनी दया है, और दया वहां से शुरू होती है। तो कहते मिथ्यात्व के समान और कोई पाप नहीं है। चर्म परीक्षक एक अष्टावक्र नाम के ऋषि थे, इनके आठों अंग, हाथ पैर मुख और पीठ आदि सभी टेढ़े मेढ़े थे। शक्ल सूरत भी कुरूप थी, पर एक रिद्धिधारी ऋषि थे। वे किसी बड़ी सभा में बड़े बड़े विद्वान भाषण देने के लिए खड़े हुए, अष्टावक्र भी खड़े हुए। कोई ऐसे टेढ़े मेढ़े अंग का हो और अचानक भारी भरी सभा में व्याख्यान देने को खड़ा हो जाए तो लोग हंसे बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए सभा में जो पंडित और विद्वान लोग थे वे हंसने लगे। अष्टावक्र ऋषि जब व्याख्यान देने लगे तो जैसे लोग हे महानुभावो, ये सज्जनों, ये बंधुओं आदि संबोधन के शब्द बोलते हैं, इसी प्रकार उन्होंने संबोधन में कहा हे चमारो। यह शब्द हम किसी के लिए भी नहीं कह रहे हैं, इसका कोई बुरा न मानना, यानी किसी चमार इसको बुरा नहीं माने। इतनी बात सुनकर सभी लोग हैरान हो रहे गए, सोचा कि इतने महान ऋषि और इस प्रकार बोलते हैं, मुख से इस प्रकार की अशोभनीय बात निकल रही है। लेकिन अष्टावक्र भी खुद ही इसका उत्तर देते हैं। ये जनक के राजा की सभा में थे ना, जनक के सभा में था वो। भला ये तो बताओ कि चमड़े का परखना जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो सभासद बोले कि चमार कहते हैं। अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि मैं खड़ा हुआ तो आप लोगों ने मेरे चमड़े की खूब परख की, परीक्षा की। परीक्षा और की में अंतर चाहिए। मेरे टेढ़े मेढ़े अंग और काले रूप को देखकर, रद्दी शक्ल सूरत को देखकर आप लोग हंसने लगे, तो क्या आप लोगों को चमार नहीं कहा जा सकता। इसलिए यदि मैंने हे चमारो कह दिया तो तुम इस शब्द से रोष क्यों करते हो। यह तो एक ऋषि की घटना का अंश बताया है। यह इसका यह अर्थ है कि अपने आप के इस चाम को ही निरख कर, इस देह को भी देखकर, यह मैं हूं, बड़ा सुभग हूं, बहुत होशियारी हूं, दुनिया में कुल डेढ़ अक्कल है, आधी अकल तो सारी दुनिया में है और एक अकल मेरे पास है। हम इन सब में होशियार है, ऐसा ऐसा इस देह में कोई अहंकार 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 न करे। क्या कहना चाहते? देखो ये तो मैं बड़ा सुंदर हूं, अभी जो कुछ करूप है वो उस पर ही, अरे मैं ऐसा हूं, मैं काला हूं, मैं कलूटा हूं, मैं टेढ़ा हूं, मैं पैरलाइज्ड हूं, मैं रोगी हूं, ऐसा करें दुखी होना, ये भी उतना ही बुरा है, ये उतना ही मिथ्यात्व है। और इस रूप रंग को भी कितना इससे कारण मैं महान हूं ये मानना, वो भी उतना ही, दोनों उतने ही मिथ्यात्व में है। ख्याल में आई ना बात? हाँ। पेज नंबर 50, अभी तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। अज्ञान का, हाँ लास्ट लाइन दूसरे की, देह को आत्मा मानना ही मोह है, मिथ्यात्व है। यानी देह ही मैं हूं, आत्मा यानी मैं, पर्याय बुद्धि है, पर्याय बुद्धि है, ये जो मनुष्य पर्याय है उतना ही मैं हूं, ऐसी उल्टी मान्यता उसको कहेंगे पर्याय बुद्धि। ये अज्ञान है, अज्ञान का पाप। और ये पाप है ये ऐसा लगता है क्या किसी को? किसी ने किसी को मारा, खून किया, झूठ बोला, मायाचारी की, वो पाप दिखता है, परंतु शरीर मैं हूं ऐसी मान्यता पाप लगती है क्या? क्योंकि दुनिया में सारे ऐसा ही मान रहे हैं ना, वो कुछ पाप करे ऐसा लगता ही नहीं है। सबसे बड़ा पाप तो ये है, क्योंकि वो माना तो उसके लिए सब कुछ कर रहे, बाकी अन्य हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल वगैरह क्यों कर रहे? मैं देह हूं मानकर ये हो रहे, ये अज्ञान का पाप। जो चीज ज्ञान रहित है उसको ज्ञान में मानना ही अज्ञान है। अरे चैतन्य चक्रवर्ती तो मैं हूं और अपना तो कुछ अता पता नहीं है, और ये शरीर ही मैं हूं, शरीर ही जानता है, ऐसा जान लिया उसने। क्या? जो चीज ज्ञान रहित है, ये हड्डी चाम वगैरह कुछ जानती नहीं है, ये ब्रेन जो दिखता है अंदर खोपड़ी के अंदर, वो भी कुछ जानने का कार्य नहीं कर रहा है। तो कहते कि जो चीज ज्ञान रहित है उसको ज्ञान में मानना ही अज्ञान है। जो चीज ज्ञान में है उसका ज्ञान न होना ही अज्ञान है। तो मैं स्वयं ज्ञान मैं हूं और मुझे उसका ही ज्ञान नहीं, मेरा ही ज्ञान नहीं है, यही तो अज्ञान है। और कहते अज्ञान के समान कोई पाप नहीं है। लोग कहने लगते हैं कि जो जान करके पाप करेगा उसे अधिक पाप लगता है, और जो जानता ही नहीं कि इसमें पाप है और पाप करे तो उसे कम पाप लगता है। इस संबंध में आपका क्या निर्णय है? कुछ कुछ ऐसा समझ में जरा आता होगा कि ठीक तो है, जो जानते नहीं है कि यह पाप का काम है उन्हें काहे का पाप, और जो जानते हो कि इसमें पाप है और पाप करे तो उनको पाप लगेगा। किंतु यह भी तो संभव है कि जानने वाले के कषाय हो पाप करने की तो संभाल हुआ रहता है, और जो जानता ही नहीं है वह तो जो पाप करेगा खूब डटकर करेगा। इसे अभी उदाहरण द्वारा समझाते हैं। ये समझ में ना क्या कहना चाहते हैं? ये पाप है ऐसा जानते हुए भी जो करता है उसे ज्यादा पाप लगेगा कहना चाहते हैं। जैसे हम आलू प्याज में इतने जीव है और जो जानते हैं और फिर भी डटकर खाते हैं तो उनको ज्यादा पाप लगे, ये इसमें अभी निर्णय कराएंगे हमें। और जो जानता ही नहीं है, जो विदेश वाले जानते ही नहीं कि मांस खाने में भी इतना ही बुरा है और ये कंदमूल में भी इतना है, तो डटकर खाते तो उनको कम पाप लगता होगा, ऐसा कोई कहता है तो उसके लिए बताएंगे अभी क्या बात क्या है। देखो पापों को जानकर कभी कर्म प्रेरणावश पाप करने की नौबत आए तो वह स्वच्छंद होकर पाप न कर सकेगा। पाप करते हुए भी चूंकि जानकार है तो पाप से कुछ उपेक्षा रखकर, कुछ निवृत्ति का अंश रखकर पाप कार्य में भी लगता है, और जिसे मालूम ही नहीं है वो तो अपने पूरे बल के साथ पाप कार्य में प्रवृत्त होता है। एक यही कारण है कि अज्ञानी को पाप का बंध विशेष होता है। जो जानते हैं उसके अंदर कोई अरे ये पाप है हा? करने योग्य नहीं, ऐसा अंदर भी कुछ विचार भी चलता है। हाँ, अज्ञानी की पापमयता। दूसरी बात यह सुनिए,
उल्टा अगर हो जाए कि वो ये जाने पाप है और ऊपर से दफास मारे थे उसको तो बहुत ज्यादा,
अरे पर अज्ञान इटसेल्फ भी पाप है ना,
वो ठीक है मेरा के
लिए। यही तो उन्होंने बताया, उसी की दल ये दलील उन्होंने किया कि आपको क्या लगता है ऊपर पैराग्राफ
तो डरता है अंदर,
वो नहीं है वही वही देखो देखो ऊपर क्या है, अभी उसका उत्तर पूरा नहीं हुआ उनका। अब अज्ञानी की पापमयता। दूसरी बात यह सुनिए कि अज्ञान खुद एक बड़ा पाप है, ये नहीं जानना इटसेल्फ बहुत बड़ा पाप है। जो उसने तन मन और वचन की चेष्टा से पाप किया है वह पाप तो अलग है, यानी उसने जो मांस वगैरह मदिरा का पाप वो तो जुदा है, किंतु उससे कई गुना पाप अज्ञान है। ये तो लोगों को लगता ही नहीं है ना, ये मिथ्या तो नामक कोई बहुत बड़ा पाप है, अज्ञान है ना मिथ्या तो। अपने आत्मा की जानकारी न रहना, परवस्तुओं के स्वरूप की जानकारी न रहना आदि जो भी अज्ञान दशा है वह स्वयं पाप है। लौकिक में भी देखते हैं ना, किसी अभी कोई विदेश जाएगा और वहां ड्राइविंग करना है और वहां के रूल नहीं मालूम है तो उसको सजा माफ हो जाएगी उसकी। अब यहाँ भी होना है, अभी कोई बच्चा है उसको मालूम नहीं है कि विष है और वो भक्षण करे ये तो लौकिक उदाहरण बहुत बहुत स्थूल है।
तो अलग में जो कहना चाहता था वो अलग है कि कोई इंटेंशनल पाप करता है स्वच्छंदता से वो तो बने,
वही तो कह रहे उसके लिए दलील करे। नहीं, नाकी निकाचित वगैरह कुछ नहीं होता है उसमें, प्रत्येक समय का बंधन है उसमें निकाचित होते हैं, ये कोई निकाचित विकाचित नहीं उसमें लगाना।
ज्ञानी को तो हमने बाहर ही निकाल दिया, ज्ञानी की तो बात ही अलग है। अभी 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 मिथ्यात्वी सभी मिथ्यात्वी है वो उसमें
उसी की चर्चा हो गई, अभी उसी की चर्चा कर रही है।
मिथ्यात्व की चर्चा,
देखो आप जो कह रहे हैं कोई जानता है कि भाई मांस खाने से पाप है फिर भी खाता है,
मांस खाने से पाप है और फिर भी खाता है,
खाता है चौल से खाता है, तो आपके हिसाब से वो बड़ा पापी है। लेकिन अभी अभी यहाँ ये बता रहे हैं कि मांस खाना ये पाप है ऐसा मालूम ही नहीं है फिर भी वो खाता है तो उसको बड़ा पाप है ऐसा यहाँ बता रहे हैं।
एक अज्ञान करता है और एक होते हुए भी करता है उसका,
मैंने यहाँ थोड़ी ट्विस्ट है, इसलिए ट्विस्ट में कहता हूँ कि यहाँ अज्ञान को मिथ्यात्व कह रहे हैं और वहाँ उसका औदयिक अज्ञान।
ये तो मैंने उदाहरण दिया भाई साहब, उदाहरण अभी उसमें मत लगाओ अभी, क्योंकि क्या होता है उदाहरण होता है वो 100% लागू नहीं होता है।
औदय का अज्ञान मत कहो, वहाँ क्षौक्षमिक अज्ञान कहो, मिथ्या ज्ञान है ये।
मैंने उसको पता नहीं है ना, ज्ञान नहीं है,
उसे ज्ञान है और तो भी मैं रात्रि भोजन कई कई बार कर लेती हूँ महीने में 3-4 दिन रात्रि भोजन, तो
वो खराब है मालूम है आपको, खराब है मालूम है और अंदर वो उसमें उसके खा लेते हैं परंतु वो अच्छा नहीं है ऐसा अंदर ही ये कुछ भाव एक चुभन है अंदर कि ये मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, करने के बाद भी आपको ये पता है कि नहीं ये मैंने ठीक नहीं किया मगर कर रही हूँ मगर ये अच्छा नहीं है, कर रही हूँ मगर अच्छा नहीं, हाँ हो जाता है। तो ये जो है ना तो पाप तो है जरूर है, यानी वो नहीं है ऐसे उसके लिए कोई छुटकारा नहीं है, परंतु यहाँ कहते हैं जो मालूम ही नहीं उसके बारे में विचार ही नहीं तो डट कर कुछ करेगा, उसको कभी विचार भी नहीं आएगा कि ये करने योग्य नहीं है, अफसोस भी नहीं है, कुछ नहीं है उसका।
यहाँ पर बात ऐसी है आपके लिए कह रहा हूँ, एक चारित्र का दोष है और एक मिथ्यात्व का दोष है, तो चारित्र यानी भाई जानते हुए भी उसी को करना, नहीं खाने वाली चीज खाना।
चारित्र का दोष सब तभी आता है कि जब मिथ्यात्व का दोष न हो तो उसके पर चारित्र का दोष
नहीं। यहाँ क्या कहना चाहते हैं उसको समझना है हमें।
तुलना तो दो में चल रही ना, चारित्र में और मिथ्यात्व में। यानी यहाँ कह रहे हैं कि मिथ्यात्व का दोष बड़ा है तो उसके हिसाब से चारित्र का दोष कम है, या वो एक्सक्यूज है, ऐसा नहीं है, वो भी दोष है लेकिन
ये करना चाहिए इसी बात नहीं हो रही है। ये किस एंगल से हमको समझाना चाहते हैं, जैसे हमें एंगल ही समझना है ना, क्या है ना, ये अच्छा है ना वो अच्छा है। मूल में तो अज्ञान इटसेल्फ बहुत बड़ा पाप है, और अज्ञान क्या है उसके ऊपर समझा के आया है। अज्ञान दशा स्वयं पाप है, ये पाप नहीं लगता। ये हमेशा हुकुमचंद जी बारे लोग उदाहरण देते ना, किसी को बचाना है, बचाने का भाव या मारने का भाव, मारने का भाव पाप है कि नहीं भाव है, और बचाने का भाव थोड़ा पुण्य है। तो किसी ने मारा तो मान लेते ना 1 ग्राम पाप लगा, और किसी को बचाया 1 ग्राम पुण्य लगा। परंतु मैं मार सकता हूँ या मैं बचा सकता हूँ, बचाने का भाव 1 ग्राम पुण्य लगा, और मैं बचा सकता हूँ ये खोटी मान्यता का 1000 ग्राम 1000 किलो पाप लगा, ग्राम भी नहीं किलो। समझ में आई बात? तो बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो बात कहाँ है यार, मान्यता की बात चल रही, तो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए करती बात। मैं बचा सकता नहीं तो चाहिए वाली बात कहाँ से आई? समझ में आती है ना बात? ये बहुत बड़ा पाप है, ये बात ख्याल समझ में नहीं आती बात। आगे देखेंगे ना, उनकी पूरी बात समझे बिना हम उस पर बहस करने से क्या फायदा। हाँ, देखो देखो, अज्ञान के संकट पर एक दृष्टांत। तीसरी बात सुनिए, देखो दूसरी बात कि अज्ञान खुद बड़ा पाप है, एक बात बताई ना, इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत देते हैं कि एक आग का जलता हुआ कोयला पड़ा हुआ है, किसी पुरुष के आगे आग पड़ी है, वह यह जान रहा है, कोई पुरुष पीछे से धक्का दे तो वह शीघ्रता से आग पर पैर रखकर ही निकल जाएगा, वह आग में अधिक न जलने पाएगा। और एक पुरुष जिसे यह पता नहीं है कि हमारे आगे आग का कोयला पड़ा हुआ है, वह तो निशंक होकर बड़ी मजबूती से अपने पैर उस आग पर रख देगा, जब वह बहुत कुछ जल जाएगा तब वह अपने पैर उठाएगा। तो इसी प्रकार समझ लो कि ज्ञान होने पर कदाचित पाप हुआ, पाबंद हो तो, पाप बंद हो तो, उसमें तीव्र बंधन की सामर्थ्य नहीं है। पर वास्तविक मायने में ज्ञान हो उसकी यह कथा है, वास्तविक मायने में जिसको ज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं, और अज्ञान ने मिथ्या। तो शांति का उपाय धर्मपालन। ज्ञानी पुरुष जानता है कि यह सर्व साम्राज्य और समागम धर्म का फल है, फिर भी वह धर्म की ओर तो झुके नहीं, और उस समागम की ओर, उस संपदा वैभव की ओर झुके तो ज्ञानी व संत पुरुष के लिए यह अशोभनीय बात है। इस छंद में यह शिक्षा दी गई है कि धर्म से सदैव सुख होता है। कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं कि आज के इस समय में जितना अन्याय किया जाए, चोर बाजारी की जाए, झूठे लेख लिखे जाए, और भी जितनी चालाकियां हो सकती हो उन चालों से चला जाए, दुनिया को धोखा दिया जाए, और इन उपायों से अपना वैभव बढ़ा लिया जाए, यश बढ़ा लिया जाए, इसमें बुद्धिमानी है और ऐसा करने वाले सुखी है। लेकिन ऐसा ही नहीं हो रहा है, ऐसे अधिक लोग ऐसे दिख रहा है, दिख रहे, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। करने वाले तो कर रहे ना, नहीं करने वाले भी अच्छे। हाँ, तो उनका उनका भरोसा नहीं अपने पर। पाप में क्यों इतने ऐसे भी जो हम देखते हैं कि जो कषायों के जो है, तीव्र कषाय वाले हो या कृष्णादि लेशा वाले, असंख्यात बहुभाग तो उनकी संख्या है, ऐसे जो हमेशा ज्यादा रहेंगे। परंतु उसके कारण उनको नहीं मिल रहा है, ये क्या है?
ये मैं तो समझा नहीं।
देखो ये मिल रहा है किसके कारण मिल रहा है? पूर्व पुण्य के उदय से मिल रहा है। और वो मान क्या, देखो ये क्या कह रहे है, आज के इस समय में जितना अन्याय किया जाए, चोर बाजारी की जाए, झूठे लेख लिए जाए, जितनी चालाकियां हो सकती उन चालों से चला जाए, दुनिया को धोखा दिया जाए और इन उपायों से अपना वैभव बढ़ा लिया जाए, यश बढ़ा लिया जाए, इसमें बुद्धिमानी है और ऐसा करने वाले सुखी है। लेकिन जो पुरुष अनर्थ करते हैं उनको तो स्वयं ज्ञात है ना कि मैंने यह अनर्थ किया है, उस प्रभु को स्वयं यह मालूम है। और जिसे अपने अनर्थ की बात मालूम है उसमें यह बल नहीं जग सकता कि वह शांति प्राप्त कर ले। पहली तो बात यह है, अरे उसने पैसे क्या प्राप्त कर लिए, शांति थोड़ी मिलेगी, सुख उसे थोड़ा ही मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये कषाय उठते हैं इट सेल्फ अपने को जलाकर उठते हैं, जो मायाचारी का परिणाम है, जो हिंसा का परिणाम है, जो दूसरे को पीड़ा देने का परिणाम है, वो स्वयं को जलाते हुए उत्पन्न हो रहा है, अपनी शांति भंग हो रही है उसमें, उस जीव की खुद का ही हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अन्याय चालाकियों से जो कोई धन या यश पाले उसके लिए अनेक उपद्रव लगे रहा करते हैं। जितने बड़ा जिसने बड़ा राष्ट्र नेता होकर भी भ्रष्टाचार किया है उसकी दशा आप लोग पेपरों में पढ़ते ही है, वे अंत में बुरी तरह मारे जाते हैं, धन भी छीन लिया जाता है, कहाँ उनको शांति मिलती है। कोई अन्य पार्टी का नेता हो गया, पहले नेता उनके सब बाहर चिट्टी सब चिट्टी चपाटी सब बाहर निकाल दी, जो जो कुछ उन्होंने किए थे, बंगले बांधे थे, वो सब सब निकल जाता है बाहर। अभी रोज देख रहे पेपरों में, वही तो कहते हैं ना। और उसको करने नहीं, उसको छिपाने के लिए और कितने अंदर पाप भाव चलते होंगे कि ये और कितनी मायाचारी, और किसको मार दूं, किसको क्या करूं, यानी उसको एक उन्होंने बुरा किया है और वो बाहर नहीं आए, उसके लिए वो कितने प्लानिंग करते होंगे और कितना पाप करते होंगे। जो एक्चुअल करेंगे, कार्यान्वित करेंगे वो तो जुदा, पर मन में कहां तक के पाप करते होंगे। हम ऐसा भी देखते हैं ना, उसने इसको मार दूं उसको मार दूं सोचते होगे तो उसका पाप तो लगेगा कि नहीं लगेगा, भले बाहर जो किसी को जो कुछ करना है वो किया उसने, परंतु उनकी प्लानिंग कहाँ तक होती होगी। और इस सबका प्रत्येक परिणाम का फल तो उनके भोगना ही है। और अंदर कितनी क्या है, अरे मेरा ये बाहर नहीं आए, मेरा अभी इतना मैं उच्च नेता कहलाता था, अभी अपयश होगा, कितने ये आत्महत्या कर लेते हैं ना। अन्य भी जो कोई बिल्डर्स हो या अन्य जो कुछ है वो तो है। यही तो है, यानी उनके हाँ, तो बस उसका अभी जो उस समय जो कुछ पाप बंधा है वो बंधा है, उस समय के जो कोई कर्म बंधे है तो बंध गए। अभी वो हमने अच्छा नहीं सोचा, ये बात आपकी पश्चाताप रूप है, वो भी ठीक है, परंतु अभी केवल वो पश्चाताप से कार्य नहीं होगा। अभी ये जो कोई परिणाम है पाप और पुण्य के, इनसे मैं जुदा हूँ, ये अपने ज्ञान स्वभाव को देखना महत्व की बात है। केवल हमने प्रतिक्रमण कर दिया, हमने ऐसा पूछ के, उससे क्या होगा, वो परिणाम मंद हो गए बस, उससे कुछ नहीं होगा, उससे आत्मा का अनुभव नहीं होने वाला। आत्मा का अनुभव करने के लिए क्या करना है, अपने ज्ञान स्वरूप में मग्न होना है। उस समय तो नए पाप नहीं होंगे ना, और उस समय तो वर्तमान के क्या, पहले के सभी पापों से हमने भी मैं उससे जुदा हुई है तो पहले में पहले नक्की कर लिया, यानी उससे जो कल्याण होगा, भले वो पाप के उदय में कुछ फल भी, क्योंकि ज्ञानियों पर भी तो संकट आते है कि नहीं, अरे मुनियों पर भी आते है उपसर्ग, तो ऐसे कुछ किसी भाव में कुछ किए होंगे उसका तो फल तो बाद में तो मिलता ही है, तो भले वो फल मिले परंतु सम्यक तो प्राप्त कर लेने के बाद उस फलों में भी कोई चिंता नहीं रहती। हमें क्यों डरते, अरे मैंने ऐसा किया तो क्या फल मिलेगा, यानी फल के लिए चिंतित है। देखो भले भले बंद गया है नहीं बंद गया उसकी चिंता नहीं करना है, अभी श्रेणी की भी बन गया था, अभी उसकी चेलना रानी है ना, चेलना समय दृष्टि थी और वो मिथ्या दृष्टि था, तो चेलना समय दृष्टि आयु बन करके स्वर्ग में गई होगी, सागरों की आयु बहुएगी वहां पर, और अभी वो नरक में से 84,000 वर्षों में ही आएगा, वो तो असंख्यात वर्षों तक बनी रहेगी वहां पर, पता नहीं उसका मोक्ष कितने भोग के बाद है, और ये तो मोक्ष भी चले जाएंगे। डरना नहीं है, कोई भी जो बंदे है वो बंदे है, उसकी चिंता मत करना, अभी अभी वर्तमान में क्या पुरुषार्थ करना है उसकी बात सोचो, ये मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, अभी वो चिंता छोड़ दो अभी, क्योंकि ये जो हमारे पास समय बचा है वो बहुत कम है, उसके हम अच्छी तरह से कैसे यूटिलाइजेशन करें उसकी बात है।
भले आपने अभी मन मान लेते हैं कि नरक का बंद किया, तो नरक का बंद अधिक से अधिक कितना होगा? त्रिपर्या में तो 33 सागर नहीं होगा, 22 सागर होगा।
अरे उतना भी नहीं होगा, अभी कहाँ उत्कृष्ट सहन है,
मैक्सिमम 22 सागर होगा। मैं तो कहता हूँ आप अनादि अनंत हो, उसके सामने 22 सागर कुछ नहीं। फिर ऐसा है कि छठे गुणस्थान में, छठे नरक में आप जाएंगे, वहाँ पर भी आप सम्यक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जो आपने जो कोई प्रयत्न किए हैं और उसकी वहाँ पर याद आ जावे आपको, वहाँ पर भी सम्यक हो सकता है। ऐसा आप निगेटिव क्यों सोचते हैं? निगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है, अभी जो हो गया सो हो गया, अब उसको तो अपन बदल नहीं सकते। अगर यहाँ पर सम्यक तो प्राप्त करेंगे तो वो जो नरक बांधा है, हाँ, वहां पर भी मतलब वो ढीला हो जाएगा सारा आपका तकलीफ वाला काम।
और देखो कौन सा क्या बंधु है उसकी चिंता ही नहीं करना, उसकी चिंता छोड़ दो, वो हमसे जुदा है पहले ये नक्की करो, हम कायम है ना, अनादि अनंत रहने वाले हैं ना, कोई भी कर्म कैसा भी बंधा हुआ हो और कैसा भी उदय हो, वो मेरे से जुदा है, पहले ये नक्की करो। ऐसा नहीं है, भाव होना ये तो अच्छी बात नहीं, वो मेरा अपराध है, ऐसे भाव क्यों हो रहे हैं पहले ये सोचो कि किसी ये व्यक्ति न रहे, क्योंकि वो संयोग हमको अनुकूल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसको हम पलटाना चाहते हैं। मान लेते ये व्यक्ति के कारण ये हो रहा है, इसलिए वो व्यक्ति नहीं रहे तो अच्छा है, ये ऐसा विचार समझो आ गया, तो ऐसा क्यों आया? क्योंकि मैं शरीर हूं मान लिया, इसलिए ये विचार आया। जब तक मैं शरीर हूं ऐसा मानेंगे तो ऐसे वो नहीं तो अन्य कोई तो विचार चलेंगे, तो पहले में पहले मान्यता मैं लू कि मैं शरीर हूं तो मैं हूं नहीं, मैं तो जीव हूं और वो सामने वाला भी जीव है, उसको क्या हम मारेंगे, वो तो जीव कायम है, मैं इस राग से जुदा हूं, वो अपने राग से जुदा है। अपने आप को ज्ञानमय चैतन्यमय देखने का अभ्यास करो, पूरी दुनिया अन्य जीव भी चैतन्यमय दिखेंगे, फिर उनके कषाय देखकर अपने को यानी क्षोभ नहीं होगा। हम क्या करते हैं, दूसरे की बिहेवियर, दूसरे के परिणाम देखकर स्वयं क्रोधित होते हैं, अरे वो चीटिंग करता है इसलिए मुझे गुस्सा आता है, उसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आता है, वो ऐसा करता है, तो वो भी अपने भावों से जुदा है कि नहीं? मैं अपने भावों से जुदा हूँ, जो अपने को जिस रूप से देखेगा वो उसको भी अन्य जो भी चैतन्य रूप ही दिखाई देंगे। देखो अभी आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 51 पर आ गए हम। धर्म पालन का अनुरोध, बरोबर। हाँ ये पढ़ लिया, ये हम देखे ना भ्रष्टाचार की दशा लोग पेपरों में पढ़ते वगैरह वगैरह, हो गया। धर्म पालन का अनुरोध, भैया शांति तो धर्म साधना ही है, चाहे वहां वैभव न बढ़े किंतु जिनका ज्ञान अपने आप में साध्य है, विवेक जिनका जागरूक है, ये अपने आप में ही करना है ना, ज्ञान जानने वाले हम स्वयं हैं, जिसको जानना है वो हम स्वयं हैं, और ज्ञान की परिया हर समय चल रही है, ऐसा भी नहीं कि उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़े। तो विवेक जिनका जागरूक है उन्हें शांति और संतोष मिलता है। विवेक नहीं जो भेद ज्ञान, उसको विवेक कहेंगे, मैं कौन हूं इस संबंधी विचार। धन वैभव से शांति नहीं आती, किंतु अपने ज्ञान से यथार्थ अवगम से शांति उत्पन्न होती। अवगम कहो ज्ञान कहो एक ही बात है। इस कारण आनंद के लिए अन्य उपाय और चिंताओं में व्यग्र न होकर एक शुद्ध सम्यक दर्शन सम्य करो। समय हुआ सम्यक ज्ञान मोर ये जोड़ कर लेना। सम्यक आचरण के पथ में हमें चलना चाहिए और इस धर्म का लक्ष्य रखना चाहिए। सर्व सिद्धि धर्म के प्रसाद से ही हुआ करती है। पुण्य के फल में हमें न झुकना चाहिए, किंतु एक उस सम्यक अवबोध आत्मदर्शन आत्मरमण। सम्यक अवबोध यानी सम्यक ज्ञान, आत्मदर्शन यानी वो सम्यक दर्शन, आत्मरमण यानी सम्यक चारित्र। यानी चारित्र क्या है? आत्मरमणता, यही चारित्र है। उस रूप धर्म के पालन में अपने आप को लगाना चाहिए। सर्व सिद्धियां धर्म के प्रसाद से ही हुआ करती हैं। छियानवे को पढ़ेंगे हम। ये आपने चेक किया है क्या?
अभी मैं चेक कर रहा हूं, लास्ट का शब्द में
यस्मिन अस्ति स भू भृतो। भू भृतो है कि भू भृतो है?
भृतो
भू भृतो धृत महा वंशा प्रदेश पर व्यापारमिता धृतोन्नति धना मूर्धना ध्रियंते श्रियै भूयांस्तस्य भुजंग दुर्गमतमो मार्गो निराशस्ततो व्यक्तं वक्तुमयुक्तमार्य महतां सर्वार्थ साक्षात। ये सर्वार्य किया है उन्होंने, सर्वार्य मंत्री की प्रशंसा करी। सर्वार्य नाम का मंत्री है, सर्वार्य साक्षात्कृत है। हम पढ़ेंगे इसको। यस्मिन् अस्ति स भूभृतो धृतमहावंशा प्रदेश पर प्रज्ञापारमिता धृतोन्नतिधना मूर्धना ध्रियन्ते श्रियै भूयांस्तस्य भुजंग दुर्गमतमो मार्गो निराशस्ततो व्यक्तं व्यक्तुमयुक्तमार्य महतां सर्वार्य साक्षात्कृतः। इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ श्लेष अलंकार किया है। श्लेष समझते हैं? हाँ, एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं, द्व्यर्थ श्लेष कहेंगे उसको। तहां एक अर्थ विषय तो कोई सर्वार्य नामा दूसरा मंत्री राजा का भया है वाने यानी उसने दुर्गम स्थान जहां कोई कृष्ण राजा का निधान था तहां जाए बाको प्रकट किया है, ताका वर्णन किया है। और दूसरे अर्थ विषय धर्म के लक्षणादि का वर्णन है। तहां पहले पहला अर्थ कीजिए है। सो प्रदेश कहिए स्थानक, सो पर कहिए उत्कृष्ट है। सौ कौन प्रदेश पर लिखा है ना, उत्कृष्ट है। कौन सा स्थान है? तो जिस प्रदेश विषय पर्वत तिष्ठे है। कैसे है पर्वत? धारे है बड़े बांस जिनूनई, यानी जिस पर बड़े बड़े बांस है ऐसे। बहुरी कैसे है? बुद्धि ही करी छेड़ा पाई है जिनका ऐसे बड़े है, यानी बुद्धि के द्वारा ही हम उसका पार पा सकते, बहुत बड़े है। बहुरी कैसे है? शिखर करी शोभा के अर्थी धार्या है ऊंचाई रूप धन जिन्हू नहीं, यानी ऐसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर है। ऐसे पर्वत नहीं करी संयुक्त प्रदेश है। बहुरी तीस प्रदेश का मार्ग है सो बड़ा है। सर्प नहीं करी अतिशयपने औरनी को दुर्गम है। आशा जे दिशा तिनी करी निष्कांत है। जहां दिशानी की शुद्धि नहीं रहे है ऐसा जाका मार्ग है। यानी वो बहुत दुर्गम है, जिसको हम पर्वत लांग नहीं सकते, उस पर चढ़ नहीं सकते हैं। सो वह प्रदेश जैसे व्यक्त सबनी करी जान्या जाए, तैसे कहना अयुक्त है कहा जाता नहीं, क्योंकि सबके लिए वो दुर्गम है, तो वो प्रदेश सबको पता नहीं है बराबर। हे आय, तिस प्रदेश का अजानन हारा ऐसा विषम प्रदेश है, सो सर्वार्य नामा कोई राजा का दूसरा मंत्री ती साक्षात किया है, जाय करी प्रत्यक्ष देखा है, यानी किसी मंत्री ने उस पर्वत को प्रत्यक्ष देखा है। ऐसे एक अर्थ विषय सर्वार्य मंत्री की प्रशंसा करी है, यानी एक अर्थ तो ये निकला उसका। अब दूसरा, अब याही का द्वितीय अर्थ कही है। अब प्रदेश पर है ना, प्रदिश्यते कहिए पर को उपदेशिये, ऐसा जो प्रदेश कहिए धर्म, सो वह धर्म उत्कृष्ट है। प्रदेश पर, प्रदेश दूसरे को उपदेशित किया जाता है, वो धर्म है और वो उत्कृष्ट है। सो कौन जाको होते भूभृत जे राजा है, ते लोकनी करी लक्ष्मी के अर्थी मस्तक करी धारिये है, लक्ष्मी के अर्थी मस्तक करी धारिये है, लोक लक्ष्मी के अर्थी राजानी को नमावे है, सो राजानी के यहू धर्म ही का फल है। कैसे है राजा, धार्या है इश्वाकु आदि वंश जिन्होंने, इश्वाकु नाम का वंश है ना, हाँ। बहुरी कैसे है, बुद्धि के पार को प्राप्त भय है। बहुरी कैसे है, धारे है उन्नतता और धन भंडार जिन्होंने, ऐसे राजा जिस धर्म होते ही प्रधान हो है। बहुरी तिस धर्म रूप प्रदेश का मार्ग है, सो दान व्रतादि भेद नीते प्रचुर है, अनेक प्रकार है। बहुरी आशा जो वांछा ताकरी रहित है। बहुरी भुजंगम जे कामी तिनकरी दुर्गम है, अगोचर है। वहां सर्प अर्थ किया था भुजंगम का, और यहाँ तो उसका अर्थ होता है कामी पुरुष। जाते ऐसे है तातई आर्य जे भोले तिनी विषय बड़े जो है हम, तिनके सो मार्ग प्रकट करने को अयुक्त है। हमारी इतनी शक्ति नाही जो प्रकट कहे। बहुरी समस्त जे आर्य कहिए गणधरादि सत्पुरुष वा सबनी करी सेवने योग्य ऐसा सर्वार्य कहिए सर्वज्ञ देव तिन करी प्रकट किया है। उनका प्रकट किया हु धर्म का मार्ग सबके प्रतीत करने योग्य है। भावार्थ, यहाँ कोई प्रसंग पाकर पाई सर्वार्य मंत्री की तो प्रशंसा करी, और याही का दूसरा अर्थ विषय धर्म का फल व धर्म का मार्ग प्रकट करनहारा तीन का स्वरूप कया है। यानी एक ही शब्द के दो अर्थ करके, इसी एक श्लोक के दो अलग अलग अर्थ करके उन्होंने बताए हैं, वो सारे विशेषण वगैरह सब जो है उस पर लागू करके दिखाए। अब यहाँ हम 51 पृष्ठ पर 96 श्लोक के नीचे वहां से पढ़ेंगे। धर्म की आदेयता, ये पीछे है ना घड़ी, ऊपर की 4-5 मिनट है अभी, हाँ अच्छा पढ़ेंगे। यह आत्मकल्याणी धर्म, जिस धर्म के प्रसाद से बड़े बड़े राज्य पद प्राप्त होते हो और लोग भी लक्ष्मी वैभव संपदा के लिए जिस धर्म के प्रसाद को अपने मस्तक पर धारण करते हो, अथवा जिस लक्ष्मी के अर्थ लोग उन राजाओं को नमस्कार किया करते हो जो धर्म के प्रसाद से बड़े हुए हैं, यह सब उस धर्म का ही महात्म्य है। कैसे हुए ये राजा जो बड़े इश्वाकु वंश में उत्पन्न हुए, इश्वाकु चाहिए, जिनकी बुद्धि अपरिमित थी, जिनका धन भंडार बड़ा विपुल था, ऐसे राजा जिस धर्म के प्रसाद से हुआ करते हैं, वह धर्म का मार्ग सबको प्रतीति करने के योग्य है। धर्म फल, धर्म का फल आत्मीय आनंद है। समस्त संकटों से मुक्त होना, सर्व कर्मों से छूट जाना, यह सब धर्म का फल है। लेकिन इस धर्म के होते हुए जो कुछ शुभोपयोग रहता है, शुभराग रहता है, उसके कारण ऐसे पुण्य का बंध होता है कि जिसके उदय में वैभव संपदा स्वयमेव प्राप्त होते हैं। तप करना, व्रत पालना, दया संयम से रहना, क्षमा, नम्रता, सरलता, निर्लोभता आदि जो परिणाम है, यही तो धर्म प्राप्ति के मार्ग है। यह धर्म कामी पुरुषों के लिए दुर्गम है। जिनका चित्त काम वासना में रहा है अथवा परवस्तु के प्रति जिनके व्यामोह रहा करता है, अन्य किसी न किसी चीज में बहुत रुचि है तो उसको आत्मा की रुचि नहीं हो सकती, उन पुरुषों को यह धर्म अगोचर है, यानी उनके ख्याल में नहीं आता, वो जान नहीं सकते। धर्म की सर्वप्रियता। धर्म शब्द सभी को प्रिय है और सभी लोग अपनी अपनी कल्पना में किसी न किसी क्रिया अथवा तत्व को धर्म मार्ग कहकर उसके विलास को उत्सुक रहा करते हैं। जिन्होंने जो भी धर्म माना उस धर्म पर न्यौछार हो जाते हैं। अब ये जो अतिरेकी वगैरह चल रहे हैं, वो अपना धर्म माना उसके लिए अपनी लाइफ में आपकी जिंदगी तक न्यौछार कर देते। वह धर्म आज नाना भेदों में दिख रहा है, जिसके नाना मजहब नजर आते हैं, नाना ने अनेक प्रकार के। वास्तव में जैसे सब आत्मा एक समान है, क्या कहना, सब आत्मा एक समान है, एक स्वरूप है, ऐसे ही धर्म एक स्वरूप है। धर्म अनेक नहीं हो सकते। संसार में रुलने का उपाय भी एक है और संसार से मुक्त होने का उपाय भी एक है। लेकिन कोई निष्पक्ष भाव से विचारे तब धर्म की झलक हो, और निष्पक्षता तभी आ सकती है जब अपने में एक आत्मा का ही नाता माने। जहां इसने अपने देह पर दृष्टि दी तो इस देह दृष्टि के कारण, देह ही मैं हूं यह ऐसी मान्यता, अन्य वस्तुओं को अपनाने की बुद्धि के कारण धर्म का पात्र नहीं रहा। ये देह दृष्टि के कारण वो धर्म का पात्र नहीं रहा। समता में धर्म है, जहां राग द्वेष है वहां धर्म नहीं है। धर्म के बिना यह जीवन यूं ही खोया जा रहा है। अब यहीं रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक ना।